ये है SBS रेडियो पॉडकास्ट सेटलमेंट गाइड, ऑस्ट्रेलिया में जिंदगी गुजारने से मुतालिक मालूमात, मसाइल और कहानियाँ SBS उर्दू की जानिब से।
ऑस्ट्रेलिया में बुजुर्गों की तादाद में तेजी से इजाफा होता रहा है, खासतौर पर माइग्रेंट या बैरून मुल्क से आकर बसने वालों की एक बड़ी तादाद की दूसरी और तीसरी जनरेशन अब यहाँ बुजुर्गों की देखभाल में मसरूफ है। हुकूमत इस सिलसिले में तकरीबन $350 मिलियन सालाना खर्च कर रही है बुजुर्गों के साथ जातियों के वाकयात को रोकने के लिए। एल्डर एब्यूज प्रिवेंशन यूनिट के अंदाजों के मुताबिक ऐसे बहुत से वाकयात हैं जो माइग्रेंट कम्युनिटी में अनरिपोर्टेड हैं, यानी उनको कहीं रिपोर्ट नहीं किया जाता और उनकी तादाद आम ऑस्ट्रेलियंस के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है। एक ऐसे मुल्क में जहां कल्चर और जबान का फर्क बुजुर्गों की मुश्किलात में इजाफा करता है, वहां अपने ही अजीजों के हाथों जातियों का सामना भी करना पड़ता है। होम एंड कम्युनिटी सोशल सपोर्ट प्रोग्राम के एज केयर मैनेजर अलेक्जेंडर एर्बनोफ कहते हैं कि बुजुर्ग अफराद की तन्हाई भी उनकी जातियों का सबब बनती है, क्योंकि वो माशरे से अलग थलग होकर रह रहे होते हैं।
It is a language barrier, it is a misunderstanding of or lack of knowledge of the service system, because the service system in Russia, where they've come from, or from China, or from Europe, where they've come from, is totally different to what it is here. It's isolation, it's lack of confidence in asking. We've always argued that social support is such an important part because it keeps people connected with not only their own community, information from outside of that community. People talk.
60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कानूनी मशावरत फराहम करने वाली न्यू साउथ वेल्स सीनियर राइट सर्विसेज की सॉलिसिटर मेलिसा चैपरलिन के मुताबिक के बुजुर्गों और उनके रिश्तेदारों या अजीज अकारब के दरमियान ताल्लुकात की खराबी भी बुजुर्गों के साथ जाती और खराब रवैये का सबब बनती है।
It commonly can occur in family relationships. You'll get elder abuse, whether it's financial or physical, by family members. It could be a daughter or son or other related family member that's coming into the home of the older person. And where these relationships break down and are put under strain, elder abuse can arise.
South Asian Muslim Association of Australia ya SAMA ke Zahid Jamil kehte hain,
koi bhi community ye dawa nahi kar sakti ki wo is burai se paak hai. तब भी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में साउथ एशियन मुस्लिम कम्युनिटी में निस्बतन बेहतर हालात हैं, हालांकि इसकी बाकायदा कोई स्टडी नहीं की गई है। कम्युनिटी के वो बुजुर्ग जो यहाँ लंबे अरसे तक रहने के बाद रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं, वो आमतौर पर तालीम याफ्ता हैं और उनके अपने सुपर एनवेशन फंड से जो पेंशन मिलती है वो अच्छी रकम होती है, उनकी खुद की अच्छी रिहायशें हैं और वो आमतौर पर बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं है। खानदानी और मजहबी रिवायात से हटकर अगर बच्चे यहाँ के माहौल में रंग बस जाएं या ग्रैंड चिल्ड्रन अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गैर मजहब में शादियां कर लें, तो वो भी बहुत से बुजुर्ग वालिदैन के लिए तकलीफ देह होती है। और अगर वो किसी किस्म का ऑब्जेक्शन करते हैं तो बच्चे उनसे बदतमीजी भी करते हैं। जो बुजुर्ग नर्सिंग होम्स में रहते हैं उनके बच्चे अगर उनसे रेगुलरली ना मिलें तो बुजुर्ग परेशानी का इजहार करते हैं। उनके नर्सिंग होम में जो खाना पीना होता है वो वहाँ उनके जायके के मुताबिक नहीं होता और वो ये तवक्कु करते हैं कि हर हफ्ते 2-3 मरतबा घर का बना हुआ खाना उन्हें मिल जाए, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता और समाज जैसा इदारा वो इस किस्म के खिलाफ को पूरा करना।
अगर वालदैन की जहनी इस्तेदाद वो नहीं रहती कि वो सही बात के ऊपर अपने रिमार्क्स दे सकें, कमेंट्स दे सकें, तो बच्चे उनका मजहका उड़ाते हैं। इससे ये तो एक नफ्सियाती किस्म का टॉर्चर हो गया, जैसे हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कहते हैं कि बुजुर्ग ये महसूस करते हैं कि बड़े होने के बाद अब हमारी औलाद जो है वो हमको बेवकूफ़ या बदअकल समझ रही है, तो ये एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर रहता है और बहुत से लोग का शिकार हो जाते हैं, जहनी माजूरी का या गफलत या बेहोशी की हालत में अक्सर चले जाते हैं और सही फैसले सही वक्त के ऊपर सही बात नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन उसको जो टैकल करने का तरीका है, जिसको हैंडलिंग कहते हैं, कि आपके अजीज रिश्तेदार से जो आपकी तवक्कात हैं वो उनकी जहनी कोफ्त में मजीद इजाफा करता है, उनकी इज्जत नफ्स को धचका पहुंचता है सुबह और शाम। ایک تو یہ معاملہ ہوا, دوسرا یہ معاملات ہیں جیسے ہم پاور آف اٹارنی کی بات کرتے ہیں, اس قسم کے واقعات بھی کیا دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں, یعنی جائیداد کے معاملے میں جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا؟
یقیناً وہ معاملات بھی ہوتے ہیں, مختلف قسم کی پاور آف اٹارنی ہوتی ہے, ایک تو میڈیکل پاور آف اٹارنی ہوتی ہے اور پھر جو جائیداد کے سلسلے میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ الگ معاملات ہوتے ہیں. دوسری قسم کی نگلیکٹ بھی ہو سکتی ہیں, جبکہ اگر بچوں کی کیئر میں بزرگ ہیں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی دوائیں وہ صحیح طریقے سے مینج نہیں کر پاتے, وقت پر ان کو دوا نہیں دیتے, ڈوسیجز مس کر دیتے ہیں جس سے ان کی طبیعت اور خراب ہونے لگتی ہے, پھر ان کے بلز وقت پر پے نہیں ہوتے, ان کو ریگولرلی غسل نہ کروانا, شاورز نہ دلانا, انہیں اپنے ساتھ آؤٹنگز پر نہ لے جانا. یہ تو سلسلے وہ ہیں جو کہ یہاں پر جو بزرگ ہیں اور جو اب یہاں پر ریٹائر ہو کر بزرگی تک پہنچے, لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ان والدین پر جن کو بچے بر صغیر سے ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں بلاتے ہیں, ان کے مسائل نسبتاً اور بھی زیادہ ہیں. اول تو ان بزرگوں کو آسٹریلیا کے ماحول سے واقفیت نہیں ہوتی, وہ بہت اکیلاپن محسوس کرتے ہیں.
The Federation of Ethnic Communities Council of Australia یا FECA نے اپنے 2020 ویژن میں خاص ہدف ان تارکین وطن کو قرار دیا ہے جن کے بزرگ مختلف کلچر اور زبان کے مسائل سے دوچار ہیں. FECA کی چیئر پرسن میری پیٹیسٹوس کہتی ہیں کہ ضعیفوں کو اپنے حقوق کے بارے میں ان کی اپنی ہی زبان میں آگاہی اور دوسروں سے دوستی اور بات چیت کے مواقع پیدا کرنا بھی بزرگوں کے ساتھ ذاتی روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں.
The only way you can exercise choice and control is if you're an informed consumer. So what we're advocating for is that choice is really only enabled if you have the power and the knowledge to exercise choice. Called Australians need to understand what services are available to them. They need to be able to communicate those their needs in their own language, and they also need to be able to talk to people so that they can understand what services are available so that they can make informed choices.
Category aur bhi hum add kar sakte hain jisme grandchildren ki child caring bhi shamil hai. Dada dadi nana nani apni ek mohabbati qisam ki akhlaqi ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ ان بچوں کو اپنے پاس رکھیں, ان کی تنہائی بھی اس سے کم ہوتی ہے اور وہ اس سے ایک طرح کا سکون بھی حاصل کرتے ہیں. مگر مغربی سوسائٹی میں صورتحال مختلف ہے, اس کو ایک طرح کی ذمہ داری کے طور کے اوپر دیکھا جاتا ہے. برصغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے بزرگوں اور کمیونٹی کے درمیان اس سلسلے میں کس قسم کا رویہ پایا جاتا ہے, اس کے جواب میں ساؤتھ ایشین مسلم ایسوسی ایشن آف آسٹریلیا کے زاہد جمیل کہتے ہیں,
یہ ایک اچھا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ زیادہ تر بچے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ ہے کہ چائلڈ کیئر کاسٹ بہت زیادہ ہے, اور دوسرے یہ کہ یقیناً دادا دادی یا نانا نانی ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ ہاں وہ بچوں کی پرورش کے لیے ان کے پاس جا کر رہنا, یا صبح بچے جب کام پر جاتے ہیں ان کو نانا نانی یا دادا دادی کے یہاں چھوڑ دینا. تو یقیناً یہ بذات خود تو ان کے لیے بزرگ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک خاصا فزیکلی اسٹرینوس جاب ہوتا ہے, کیونکہ ایک تو چند وقت کے لیے, تھوڑے سے وقت کے لیے بچے آپ کے پاس آ جائیں تو بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے, لیکن اگر بچوں کی کیئر آپ کو صبح سے شام تک کرنی پڑے تو پھر بڑا مسئلہ ہے بچوں کو, اور پھر ان دادا دادی یہ جو بزرگ ہیں ان میں جسمانی وہ قوت نہیں رہتی ہے. بچے عام طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو گود میں لیا جائے اور لمبے وقت تک گود میں لیا جائے, تو وہ بھی ایک خاصا بڑا مسئلہ ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کی ادھر اس طرف بھی توجہ جا رہی ہے, اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ غالباً اس کے عوض کسی قسم کی کچھ رقومات, چائلڈ کیئر کی رقومات وہ ایسے گرانڈ پیرنٹس کو دی جائیں جو کہ اس کام میں لگے, کیونکہ ہمارے بزرگ اپنی پریشانیوں کا کسی سے ذکر نہیں کرتے, اور اگر خاص طور سے بھی پوچھا جائے جواب دینے میں جھجھک محسوس کریں گے. ان میں بہت قوت برداشت ہوتی ہے, پھر خصوصی طور پر خاندان کی عزت کا ان کو بہت احساس ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بتاتے چلوں کہ اپنی ہی کمیونٹی میں بڑی عمدہ مثالیں دی, اور جہاں بچوں نے بزرگ والدین کی بہت لمبے عرصے تک بہت خدمت کی ہے, تو اور جیسا آپ نے پہلے بھی کہا کہ بزرگی میں یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, سنائی کم دیتا ہے, تلفظ میں تتلاہٹ آ جاتی ہے, وہ بہت ضدی ہو جاتے ہیں, اور جسمانی کمزوری کے علاوہ ان وجوہات سے بزرگوں کے ساتھ ڈیل کرنا کافی چیلنجنگ بات ہے یقیناً, اور بہت سے بچے اس سے پریشان ہو کر ان سے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, क्योंकि वो उनकी कमजोरियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते।
एज केयर मैनेजर अलेक्जेंडर एबनॉफ कहते हैं कि बाज दफा ज़ईफ अफराद को अपने हुकूक का इल्म ही नहीं होता और वो इसी ला इल्मी में जातियों का शिकार होते रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में ज़बान अहम किरदार अदा करती है।
You can imagine someone that doesn't have a big network of people and relies on one or two people, it's very easy for those people get the old person to sign something that they didn't understand what they're signing, they're a big bother to the person, and even though the carer in inverted commas is supposed to be helping the person stay at home, what they're in fact doing is they're waiting for that person basically to die, and providing very minimal सपोर्ट।
जहाँ कहीं एब्यूज होता है उसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि जो उसका शिकार हो रहा होता है उसको उसका इल्म नहीं होता, और इस तरह के जो मालूमाती प्रोग्राम होते हैं या मैसेजेस होते हैं या दूसरे उनको आगाही देते हैं, तो जो एब्यूज करने वाले होते हैं वो उनकी ये कह के मुखालफत करते हैं कि हम हंसी खुशी रह रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे रिश्तेदारों को एक दूसरे से बदगुमान कर रहे हैं या उनको मुखालफत पे उभार रहे हैं या उनमें बगावत का जज्बा पैदा कर रहे हैं। तो ये अनरिपोर्टेड वाले जो वाकयात हैं ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या अनरिपोर्टेड वाकयात को मंजरे आम पे लाने की जरूरत है? इस सवाल के जवाब में जनूबी एशिया के बुजुर्गों की फलाही तंजीम के सरबरा जाहिद जमील कहते हैं,
जो हम लोगों का कल्चर है वहाँ पर ना तो बच्चे ये चाहते हैं और ना ही वालिदैन ये चाहते हैं, तो एक एजुकेशनल प्रोग्राम की जरूरत है, और जो हमारे हिंदू पाक की कम्युनिटी है बरे सगीर की, वहाँ पर गालिबन उस तालीम की और भी ज्यादा जरूरत है। एल्डरली अब्यूज के लिए खास डिपार्टमेंट्स उन्होंने कायम किए हैं, न्यू साउथ वेल्स में फैमिली एंड कम्युनिटी सर्विसेज का जो एजिंग डिसेबिलिटी एंड होम केयर डिपार्टमेंट है वो इसको हैंडल करता है, जहां वो आपको तमाम मशवरे भी देते हैं, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाए जाएं, या वो आपके बिहाफ पर सेंट्रल लिंक से बात कर सकते हैं और बैंक से भी बात कर सकते हैं और जनरल एडवाइस देते हैं। अगर माहौल खराब है ये डिपार्टमेंट्स जो है प्रॉपर एडवाइस देते हैं एक दोस्ताना अंदाज में, और इनकी हेल्पलाइन है, मैं आपको न्यू साउथ वेल्स एल्डर अब्यूज लाइन का नंबर दे देता हूँ, 1800-628-221, 1800-628-221। ऐसे ही इदारे दूसरे स्टेट्स में भी हैं।
ऑस्ट्रेलिया में बुजुर्गों के साथ जाती का इल्म रखने वालों के लिए कोई कानून ऐसा मौजूद नहीं है कि ये एक लाजमी जुज है कि आप कोई जाती हो रही हो तो उसको जरूर रिपोर्ट करें, मगर इस सिलसिले में आप अपने अखलाकी जिम्मेदारी जरूर पूरी कर सकते हैं।
समाज साउथ एशियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया का खास मकसद बुजुर्गों की खिदमत करना है। आज के मौजूद के ताल्लुक से हम वॉलंटियरिंग सर्विसेज फराहम करते हैं, जैसे कि हमारे वॉलंटियर्स बुजुर्गों के लिए खाना बना देते हैं, उनको डॉक्टर्स के यहाँ ले जाते हैं, उनके साथ बैठकर सिर्फ वक्त गुजारना वो एक बड़ी खिदमत है।
ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बुजुर्ग और ज़ईफ अफराद खुद को जातियों से किस तरह बचा सकते हैं, इस मौजू पर तैयार की हुए फीचर में दीगर अफराद के साथ आपने साउथ एशियन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया या समा के जाहिद जमील भी हमसे बात कर रहे थे, और यहीं पर ये फीचर खत्म करते हैं।
ये थी SBS रेडियो पॉडकास्ट। सेटलमेंट गाइड से मुतालिक मजीद कहानियों के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए।